नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। कहा, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए 25 लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर मॉरिशस की दो दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की राजस्थान उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं को स्थानांतरण के लिए नोटिस जारी किया। खरीफ मौसम की बुआई का क्षेत्र 575 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ और मौसम विभाग ने पश्चिम तट और गुजरात में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक संदेश में कहा कि भारत और नेपाल के बीच मित्रता को और मजबूत करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए वे मिलकर काम करेंगे। श्री ओली ने आज चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने नवनियुक्त 21 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेपाली कांग्रेस के प्रकाश मानसिंह और सीपीएनयूएमएल के विष्णु प्रसाद पोडेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की सत्ता से बाहर होने के बाद 72 वर्षीय केपी शर्मा ओली ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। काठमांडू में राष्ट्रपति निवास में शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव, पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कल श्री केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के साथ दो उप प्रधानमंत्रियों ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति ने 21 मंत्रियों को भी पद और गोपनीय की शपथ दिलाई। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक से संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं को नोटिस जारी किया। हालांकि पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। भारत में खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान लगभग 50 लाख हेक्टेयर की तुलना में 62 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दालों की खेती हुई है। तिलहन की खेती 140 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 115 लाख हेक्टेयर से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि धान की बुआई का क्षेत्रफल बढ़कर 115 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की अवधि में 95 लाख हेक्टेयर से अधिक था। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की मदद से 9 वर्षों में प्राप्त उपलब्धि इसके बगैर हासिल करने में 50 वर्ष लग जाते। श्री अमिताभ कांत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा पर भारत के G20 कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट।
श्री अमिताभ कांत ने कहा कि भारत डिजिटलीकरण के मामले में बहुत आगे है और रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का उपयोग होने से देश में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन होता है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट दुनिया के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। कार्यबल के सह अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने कहा कि दुनिया भर की सरकारें ये महसूस कर रही हैं कि यदि वे सतत विकास और समावेशी विकास जैसे सामाजिक लक्ष्यों को वास्तव में हासिल करना चाहती हैं तो इसके लिए उनके पास डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा होना चाहिए। कार्यबल की स्थापना जनवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता का एजेंडा पूरा करने और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तथा वित्तीय समावेशन पर प्राथमिकताओं की निगरानी एवं सुविधा के लिए की गई थी। दुर्गेश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि कौशल भारत योजना के अंतर्गत अब तक 1,86,00,000 से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। श्री चौधरी ने आज नई दिल्ली में विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम में कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के अंतर्गत 10 वर्ष पहले विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। श्री चौधरी ने कहा कि उनका मंत्रालय कुछ और समावेशी योजनाएं बनाएगा ताकि वर्ष 2047 में भारत विकास राष्ट्र बनने में योगदान कर सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मॉरिशस के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, सागर दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के विचारों के महत्व को बल मिलेगा। इसमें बहुउद्देश्यीय द्विपक्षीय संबंध और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों को जारी रखने में भी मदद मिलेगी। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए फलस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को $25,00,000 की पहली किस्त आज जारी कर दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए $50,00,000 के योगदान की घोषणा की थी। इसमें फलस्तीनी शरणार्थियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। भारतीय मिशन ने कहा है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में फलस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के माध्यम से $3.5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित UNRWA के सम्मेलन में भारत ने घोषणा की थी कि वित्तीय सहायता के अलावा वो एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए दवाएं भी उपलब्ध कराएगा। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिश्री ने आज विदेश सचिव का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया जिनका कार्यकाल कल समाप्त हुआ था। श्री मिश्री 1989 बैच के अधिकारी हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। श्री मिश्री ने चीन, म्यांमार, स्पेन में भारतीय दूत के रूप में भी काम किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम ने 12 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों पर पुलिस पर गोलीबारी, हत्या, विस्फोट, डकैती और अपहरण में शामिल होने का आरोप है। इन 12 माओवादियों में से 5 को मेटापाल के जंगल से और 7 को तर्रेम इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 माओवादियों पर ₹4,00,000 का इनाम था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के आवासीय परिसरों और रायपुर तथा भिलाई में आयोग के परीक्षा नियंत्रक के आधिकारिक परिसरों पर तलाशी ली। इससे पहले ब्यूरो ने 2020-2022 के दौरान आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार में अपने सगे संबंधियों को भर्ती कर अपने पद का दुरूपयोग करने के आरोप में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और अन्य के खिलाफ मामलों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था। हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे से उड़ानें 15 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। हरियाणा के नागरिक विमानन मंत्री कमल गुप्ता ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन, बिजली, लोक निर्माण और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया है कि वे 15 अगस्त से पहले हवाई अड्डे की मुख्य चारदीवारी, पार्किंग क्षेत्र, मुख्य भवन, प्रवेश मार्ग सहित विभिन्न कार्यों को पूरा कर देना चाहिए। डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि अंबाला वायुसेना स्टेशन के रनवे को अंबाला एयरपोर्ट पर विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 2 दिन का स्थापना प्रौद्योगिकी दिवस समारोह आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। पहले दिन स्कूली विद्यार्थियों को कृषि और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल स्थापना दिवस का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने आज संवाददाता सम्मेलन में परिषद की 100 दिन 100 किस्में 100 दिन 100 प्रौद्योगिकी और एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जैसे प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। जून 2024 में भारत का कुल निर्यात 65.47 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.4% अधिक होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2024 के लिए कुल आयात 73.47 अरब डॉलर अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला मंत्रालय ने आज सातवें चरण के दूसरे प्रयास के अंतर्गत 3 कोयला खदानों की नीलामी के लिए कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौते को लागू कर दिया है। व्यावसायिक कोयला खनन के तहत मच्छाकाटा कोयला खान, कुडानली लुबरी कोयला खदान और सखी गोपाल बी काकू रही से संबंधित कोयला खदान के लिए समझौते लागू कर दिए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने कल देश के पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी है।
महाराष्ट्र कोस्ट यानी कोकण एंड गोवा और उसके साथ साथ कोस्टल कर्नाटक और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, इसी में लाल कलर का वार्निंग हम लोग दिया है और एक लो प्रेशर एरिया जो है वो फॉर्म हो चुका है सुबह ओवर उड़ीसा कोस्ट, और इसके वजह से जो मानसून काफी एक्टिव है, जो गुजरात रीजन है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक एंड केरल है, बहुत ज्यादा बारिश होगा और फ्लैश फ्लड भी हो सकता है। मुंबई भी हैवी रेनफॉल वार्निंग दिए है। और अगर सेंट्रल इंडिया का बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इस जगह में छत्तीसगढ़ में हैवी रेनफॉल हो।
दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों विशेषकर सूरत, भरूच और नर्मदा जिलों में आज मूसलाधार वर्षा हुई। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात के दूरदराज के इलाकों में बहुत तेज वर्षा जबकि मध्य और दक्षिण गुजरात में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
राज्य के 150 से अधिक तहसीलों में आज शाम तक हल्की से भारी वर्षा हुई। सूरत जिले के उमरपाड़ा क्षेत्र में मात्र 6 घंटे में पूरे राज्य में सबसे अधिक 13.9 इंच बारिश हुई, जिसके बाद भरूच के नेत्रंग में 7 इंच और नर्मदा के गरुड़ेश्वर में दिन भर में 5.7 इंच बारिश दर्ज हुई, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भरूच और नर्मदा जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण कर्जन बांध के 3 गेट खोले गए हैं और बांध से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश के कारण दक्षिण गुजरात क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूट गया है और कई ग्रामीण सड़कें बंद हुई है। इस बीच आईएमडी ने कल के लिए सूरत सहित दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के कई स्थानों में रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की वापसी यात्रा आज पुरी में आयोजित की गई। बहुड़ा यात्रा के दर्शन के लिए आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पुरी में उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
आज शाम भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ श्री मंदिर के सामने पहुंचे। इससे पहले सुबह गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह से देवताओं को एक एक करके गोटी पहंडी में बाहर निकाला गया और पुरी के राजा दिव्य सिंह देव द्वारा 3 रथों पर सवार देवताओं को छेरा पहरा करने के बाद रथ खींचने का काम शुरू हुआ। भक्तों ने 2:03 पर भगवान बलभद्र के रथ और 2:04 देवी सुभद्रा के देव दलन को खींचना शुरू किया। भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघस को खींचने का काम आज 2:04 पर शुरू हुआ।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। कहा, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए 25 लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की राजस्थान उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं को स्थानांतरण करने के लिए नोटिस जारी किया। खरीफ मौसम की बुआई का क्षेत्र 575 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ और मौसम विभाग ने पश्चिम तट और गुजरात में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।